શ્રી સમયસાર ગાથા 294 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 37.
Yeah. सही बताते हैं, एक ही बताते हैं, लेकिन सुनने वाले में गड़बड़ हो जाती है अपनी योग्यता के कारण, अपनी अयोग्यता का आज्ञा का ऐसे तो ऐसा कि हमको उसकी आज्ञा में रहना है, लेकिन समझ में ही बात अन्यथा आगे इसका क्या करें, तो बहुत जटिल भगवान की वाणी हम तो समोसन में सोचने को देख लेते हैं, बात सभी पक्ष है, जो प्रयोजन सभी सुनते हैं, लेकिन एकमत होने वाले कभी एकमत नहीं है, क्योंकि सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि सुनने वाले के अभिप्राय एक नहीं है, अलग अलग है, क्या कारण है अपनी प्रयोग के कारण। अगर हमने हमारा मोक्ष का साध्य यथार्थ रूप से लक्ष्य किया होगा तो हम मिलान करते कि हमारा मत और हमारा साध्य मेल खाता है कि वृद्ध जाता है, जब होती है जिसने साध्य किसी को नहीं किया उसका साधन में पेपर होगी होगी और होगी ही। आचार्य महाराज इस पाठन को स्पष्ट करते हैं, तीन का लोक का एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं, एक और तीन काल से जटिल प्रश्न हाँ, तो वही उसका यही समाधान है कि हम साध्य वास्तविक रूप से साध्य को निश्चित करें तो गलती नहीं होगी, वरना गलती होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारी मति आत्मानुसारी नहीं है कर्मानुसारी नहीं है, हमारी मति राग को अनुसरण करती है ज्ञान को अनुसरण नहीं करती है, जबकि दोनों पर्याय उपस्थित है हमारे, राग को बैठ गए हैं ये मैं हूँ, जैसा राग है वैसा मैं हूँ, ज्ञान है ऐसा मैं हूँ, वो बात सुना देते नहीं है,
अलग अलग हो जाता है,
का बंद अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेड़े जाते हैं। जीव का लक्षण कोई खास प्रकार का है और बंद का लक्षण भी कोई खास प्रकार का है। दोनों में विरुद्धता है, दोनों में साम्यपना नहीं है, दोनों में एकदम कॉन्ट्राडिक्शन को बोलते हैं। ऐसा प्रकार है दोनों के लक्षणों में। जीव का स्पेसिफिक खास लक्षण क्या है, बंद का खास लक्षण क्या है, ऐसा जाने को दोनों को दिन जानेंगे। इसके द्वारा जानेंगे कि प्रज्ञा से जानेंगे। कैसी प्रज्ञा से जानेंगे, सूक्ष्म प्रज्ञा से जानेंगे। शनि शनि का उपमा दिया प्रज्ञा को, शनि मैंने कहा कि व्यक्ति धार वो सुख करने में सक्षम है, उसी को शनि कहने में आता है। शब्दार्थ है कि प्रज्ञा रूपी शनि के द्वारा जीव के और बंद के अपने अपने खास लक्षणों को जान करके भिन्न भिन्न करने से, भेद भेद करने से वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब वो बात तो रही परिभाषा के, मैंने वो बात रही थ्योरी के, भिन्न भिन्न करने के थ्योरी का क्या है। तो जो है विशेषता वो बात है कि उसका प्रैक्टिकल भी जहां तक संभव है श्री गुरु ने उसको बताने का सफल प्रयास किया। सफल प्रयास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वैसे तो प्रैक्टिकल साइड की बात थोड़ी थोड़ी भाषा गोचर नहीं हो सकती है क्योंकि परिणाम गोचर सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, लेकिन उसको भी कुछ उसमें जो उसके अनुभवी पुरुष होते हैं इसकी सफलता इसलिए है कि भले ही कम मात्रा में उसको दर्शाया है लेकिन सुपात्र जीव है वो बात को उसी पर से पूरी पकड़ते हैं। दिखाने वाले पूरी दिखा नहीं सकते, दिखाने वाले भले ही अधूरी दिखा सकते, लेकिन पकड़ने वाले पूरी पकड़ते हैं। इसलिए वो दिखाने वाले की सफलता की नहीं जाती, वो सब माने जाते हैं। आत्मा और बंध के विभाग करने कार्य में करता वो आत्मा उसके स्वरण संबंधी मीमांसा करने पर निश्चय तह अपने से भिन्नकरण का अभाव होने भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक है। इसको कैसे प्रतिपादन कि हमको एक कार्य करना है, हमको एक कार्य करना है तो उस कार्य के लिए कार्य करने वाला भी चाहिए और कार्य करने वाले को साधन भी होना चाहिए जो तो कार्य होता है। तो किस में एक बात का प्रतिपादन करेंगे, इसका व्यवस्थित प्रतिपादन के और जगह नहीं करेगा। तो महान आचार्य ने तो एकदम हमने जो अनुभव में जो विषय विशद है स्पष्ट है निर्मल ज्ञान उनको एकदम व्यवस्थित रूप से कि आत्मा तो करता है, इस कार्य का करता कौन है, वेद ज्ञान का साधन जो करने वाला है और मोक्ष अवस्था को साध्य के लिए जो साधन करने वाला है वो कौन है, वो आत्मा है। आत्मा है माने कि शरीर नहीं है, आत्मा है माने कि राग भी जो चैतन्य स्वभाव वाला निर्मित निष्कार चैतन्य स्वभाव वाला जो आत्मा है वही उस कार्य करने की शक्ति रखता है। तो कर्ता तो आत्मा है, इस कार्य का कर्ता कौन है? आत्मा। और बंध को विदा करने और अलग अलग करने उसको कार्य है, उस कार्य में कर्ता तो आत्मा है और उसके करण मैंने साधन, करण मैंने साधन, साधन संबंधी मीमांसा करने पर, मीमांसा शब्द शास्त्र में चले जाता है, मीमांसा मैंने गहरी विचारना, ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर की बात वाली है या बात नहीं करेगी, या समय हो जाए या तो उन्नत से बात आएगी, ये गहरिया का विषय है, इसकी बात गहराई से आएगी, तो उसका साधन संबंधी अगर हम गहरी विचारणा करते हैं, नाच के उसकी विचारणा करते हैं, तो निश्चय वास्तविक रूप से हर एक मन में अपने से भिन्न साधन का अभाव होने भिन्न साधन के भिन्न साधन में राग भी साधन में भिन्न साधन में सर्वोपर्याय के साधन से भिन्न साधन में देव गुरु शास्त्र भी साधन से ध्यान साधन अपने प्रक्रिया के साधन बहुत स्पष्ट कर दिया तो तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साधन के अगर दिन में आए तो साधन हो गए, महावीर में साधन मिले के पहले नहीं मिला वो बात नहीं, तेरा साधन तेरे में है, आगे तो कहीं भी आता है इस प्रत्येक परिशिष्ट में कहेंगे कि आत्मा में अनेक शक्तियां है, अनंत शक्तियां है, उसको कैसा इसका तो वर्णन कर रहे हैं, मैं तो अनंत उसमें करण नाम की भी शक्ति है, करण मेरे साधन नाम की शक्ति है, उस शक्ति के कारण से आत्मा अपने साध्य रूप कार्य करने के लिए पूरे पूरा पूरा साधन संपन्न है। क्या पूरा पूरा साधन संपन्न है? पूरा साधन संपन्न जो ये शक्ति भी पूरी है, जरूरी है, इसलिए हमारा कार्य करने के लिए हमें अनुकूलता चाहिए, हमें वो क्षेत्र चाहिए, हमें वो धराना चाहिए, तो वो बात कोई बात दिखती नहीं। बाद में जो कहने आता है वो व्यवहार से निमित्त के प्रदान करके कहने आता है, वास्तव में ऐसी बात नहीं है, सत्य सरल है, सुपर में क्या कहते हैं, सत्य सरल है, सत्य सुगम है और सर्वत्र इसकी प्राप्ति हो सकती है। तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि वहां सबके प्राप्ति का पाबंदी लगाया जाएगा, पांचवे राज्य में सबकी प्राप्ति हो सकती है, कहा हो जाता है सबके राज्य में, तो जो पूरा पाप करता है वो जाता है, जो पूरा पाप करने वाला है आठवें राज्य में जाता है वो भी वहां साधन संपन्न होने से कार्य कर सकता है, संपन्न का साधन है, कोई बात नहीं है, कोई कार्य कर सकता है, बहुत ही धीरे धीरे वो अपनी शक्ति का भान होता है और भान होता है तो कैसा भान होता है, मैं तीन लोग का नाम नहीं आता, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे ऊपर ऐसा भान भान होता है, साधन है अपने पास, साधन है, साधन नहीं छोड़ के ठीक है, साधन को छोड़ा जाता भी है क्योंकि भान होना चाहिए, पता दिल से आ जाएगी, वास्तव में अपने से भिन्न साधन का अभाव होने से भगवती प्रक्रिया अकेली प्रक्रिया नहीं किया विशेषण लगाया है, भगवती मेरे ज्ञान स्वरूप बुद्धि बुद्धि मैंने ज्ञान के बोलिया ज्ञान स्वरूप ज्ञान कैसे बात हो गया ज्ञान स्वरूप बुद्धि बुद्धि तो ज्ञान है बुद्धि तो ज्ञान की बढ़िया है ज्ञान स्वरूप बुद्धि माने ज्ञान स्वरूप ज्ञान माने क्या तो क्या सत्य ज्ञान जो निर्मल ज्ञान है ऐसा ज्ञान ही साधन होता है मलिन ज्ञान साधन नहीं होता है मलिन बुद्धि तो आइटम बनाएंगे रॉकेट बनाएंगे या बड़े बड़े कपड़ खाना वाले कारखाना भी लगाएंगे परिणाम करेंगे वो भी बुद्धि है वो भी ज्ञान के पर्याय है ज्ञान के पर्याय जहां तक ज्ञान मलिन है वहां तक वो काम नहीं करता प्रयोजन मूल विषय का काम नहीं करता जिसको मैं चर्चा करी कि राज में विपक्ष में दूर है अपराध में तुझे चर्चा करूंगी तुझे दुख नहीं लगता है तो हमारा ज्ञान अंधा है कि नहीं है दुख होने पर भी दिखता नहीं है लगता नहीं है तो ज्ञान अंधा नहीं है क्या ऐसा वाले को खाना भी बता दे सारे तो बर्दाश्त नहीं करने वाले जब से चालू सुख है प्रकट सुख है विद्यमान सुख है उत्पादमुख सुख है क्योंकि हमको लगता नहीं है तो ज्ञान अच्छा नहीं है क्या वो मलिन ज्ञान है अंधा ज्ञान है ज्ञान होने के बावजूद वो अंधा है आंख होने पर वो नहीं दिखता देखता आंख नहीं है खुद नहीं है जिसकी आंख वो तो नहीं देखे लेकिन जिसको आंख है और नहीं देखे और कुएं में पड़े तो इसके बड़े इससे बड़ा आश्चर्य कौन सा होगा आश्चर्य तो ऐसी बात है तो ज्ञान मलिन है निर्मल ज्ञान से ही ये सब बात दिखने में
कोई आत्मा में प्रवेश हो सकता कर सकता नहीं
ज्ञान है,
और
लेकिन बात समझाने के लिए जो मुझे को रहना है ऐसा स्पष्ट शिष्य को इनके परिणाम में ले जाते हैं। परिणाम में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है तो सब ये अवश्य प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा कि हमारा जो आत्मा है और हमारे जो धन के परिणाम है जो कि एक चेत्य है, धन के परिणाम चेत्य है और आत्मा जो है वो चेतक है, तो अत्यंत निकटता के कारण एक कैसे हो रहा है? जो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि वो तो देख ही नहीं रहे हैं। एक क्षेत्र में एक पदार्थ में दोनों तत्व होने में एक जैसे देख रहे हैं, बंधुआ कोई आत्मा के से तो बाहर नहीं है और आत्मा भी आत्मा से तो दूर नहीं है, तो निकटता होने में एक चेतक है, जानने वाला है, एक जानने वाला है, बहुत निकट है आपको, उतना निकट है इसीलिए उसमें दो गुना आकर्षण है। ये हमारी तकलीफ है बड़े क्या प्रज्ञाशाली है, लेकिन अब हम तकलीफ में चल रहे हैं, यही हमारे हमारा प्रॉब्लम है, हमारी समस्या है, इसको समस्या को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रतिष्ठा था दुख दुख नहीं लग रहा है, हम क्या करें? हम पूछते हैं कि दुख दुख नहीं लग रहा है, उसकी समझ के सवाल दुख दुख नहीं लग रहा है, उसकी गति लगना चाहिए, ऐसा भी किसको आता है? ऐसा भी किसी एक को दूसरे को आता है और उसमें आता है। पर जब दुख स्थूल है, वो अत्यंत स्थूल है, वो भी नहीं दिखता है, तो जो अत्यंत सूक्ष्म है ऐसा सूक्ष्म हम देखेगा ही क्या? जहां पहले अपेक्षा रख के पहले हमको सूक्ष्म स्वभाव दिखे तब हमको कुछ दिखेगा, तो ये बात तो कभी होने वाली है नहीं, क्योंकि मुझे बात नहीं दिखती है और एक बात देखने का स्वाद पैदा होता है। पहले तो वही दिखेगा, पहले जब ये मूर्ति की दिखती नहीं है तो बारीक दिखने का सवाल पैदा ना होता है। अगर हम चेष्टा करें तो भी बेकार बात है हमारे, तो मूर्ति भले ही नहीं दिखे हमको पहले बारीक देख लेना है। हमको क्या है कि हमको नहीं दिखता है, इसका मतलब हमारा ज्ञान निर्मल नहीं है, हमारा ज्ञान जल पर मलिन है, उसको साफ करें। कैसे साफ करें? कि हमारे आत्मकल्याण की रुचि हमारे तीव्र होगी, हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन को हम अच्छी तरह चिपक के रहे सबको पता ही ज्ञान निर्मल हो जाता है, लेकिन हमारा प्रयोजन को छोड़ करके हम इधर उधर फैल जाते हैं तो हमारा ज्ञान निर्मल हो जाता है। कुछ हमारी तैयारी में आ जाए उसका तो कम से कम होना चाहिए, हमको हमारा प्रयोजन को पकड़ने का कोई तीव्रता नहीं हो, उस विषय में हमारी सावधानी नहीं हो, तो हमको हमारा कार्य करना है वो कैसे करना चाहिए तो जाया जाता है क्या? सुनाया जाता है क्या? अगर हम तैयार होंगे तो निमित्त तो विश्व में है ही, निमित्त बिना का ये विश्व है ही, समस्त द्रव्य आपस में निमित्त निमित्त की किसी दृष्टि परस्पर उपद्रव जीवाना, परस्पर उपद्रव जीवाना मना निमित्त चल ही रहा है, निमित्त है ही,
Yeah.
ये जो रागादी से एकत्व पड़ा है, शांति एक पड़ा हो जाता है, वास्तव में क्या है तो ज्ञान को ज्ञान है, दर्पण है, पर बंध भाव है, तो इसे भिन्न कार्य को रखा परिणाम कुछ परिणाम है रागादी का, वो परिणाम है वो ये है, वो ज्ञान का ये है, ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन एक पदार्थ में एक सत्ता में होने से और वेद ज्ञान का अभाव होने के कारण और वेद ज्ञान करने की शक्ति कुंठित होगी है इस कारण से वेद ज्ञान तो नहीं है लेकिन वेद ज्ञान करने की शक्ति भी नहीं रही कैसा नहीं रही सबको समझे उतनी कुंठित हो गई है कि राग जो गिनित नहीं है तो ज्ञान में वैसा का वैसा प्रतिबिंब होता है पर वैसा ही अपने को मान लेता है राज को भी अपने को मान लेता है जान लेता है एक न्याय से भिन्न है लेकिन यहाँ जो प्रत्येक निकटता लेना है वो एक पदार्थ के एक पदार्थ के दोनों पर्याय है ज्ञान ज्ञान उनकी पर्याय है उनकी आत्मा में राधा जी जो है तो चारित्र गुण के पर्याय है वो भी आत्मा का है रोग है लेकिन अवस्था तो इसकी है शरीर में सोजन आया लेकिन है तो शरीर की अवस्था भले रोग है सोजन है वो रोग है तंदुरुस्ती नहीं है भले मोटा पर दिखता हो और दूसरे को अच्छा पर भी दिखेगा लेकिन वो रोग है रोग है लेकिन शरीर की अवस्था का रोग है शरीर की जो तंदुरुस्ती है वो परिभूत नहीं है जैसे राग है वो राग आत्मा की अवस्था में है लेकिन आत्मभूत नहीं है वो स्वभावभूत नहीं है रोग कितना अंतर है लेकिन आत्मा की अवस्था में रोग भी नहीं है ऐसा कोई कहे तो ये शांत हो जाएगा प्रश्न उठाया है कि आत्मा और बंध की अत्यंत निकटता है अंदर में वेद ज्ञान का अभाव है अगर वेद ज्ञान का कारण आहूत होता होता तो कोई आपत्ति नहीं है किन पर चले जाते विज्ञान का अभाव है इस कारण से वो एक ही हो ऐसा व्यवहार किया जाता है गवर्नमेंट परिणमन किया जाता है नहीं हो नहीं सकता लेकिन ऐसा ऐसे ही करते हैं राग होते हुआ है ये हमारा राग है ऐसा ही होता है आगे आगे जो प्रश्न है वो अपने आप में थोड़ा प्रैक्टिकल अवलोकन कर लेना देखिए हमको क्या हो रहा है राग और ज्ञान को कैसे समझ में आता है परिणमन में क्यों दोष नहीं रहता है समझ में आता है हमेशा लेकर के समझने को बैठते हैं बुद्धिमान भी है ठीक है ज्ञान ज्ञान है राग राग में लेकिन अनुभव में तो नहीं आता है राग और ज्ञान गंभीर अनुभव में तो नहीं आता है जो भिन्न अनुभव में आता है भिन्न होने के बावजूद भी तो एक साथ एक हो गया है ऐसा व्यवहार किया जाता है ऐसा एक परिणाम किया जाता है व्यवहार में खत्म नहीं है व्यवहार में परिणाम नहीं है बात परिणाम की बात कर रही है प्रसाद जी ने एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार में माना जाता है अनुभव में लिया जाता है उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे खेला जा सकता है, प्रज्ञा के द्वारा उसको कैसे नियंत्रण करें, कृपा करके हमें बताइए। उत्तम सूत्र के मुख सूत्र मुख में ये प्रश्न रखा है। अच्छा इसलिए वो रखा है कि आपको ये बात सुन करके भीतर में ये प्रॉब्लम हमारी है ऐसा स्पष्ट है क्या? ये तो पहले स्पष्ट कर दो, फिर इसका उत्तर प्रैक्टिकल रूप में वो समझ में आएगा। वरना वो प्रैक्टिकल क्या बताना चाहते हैं, विज्ञान का किस प्रकार का प्रैक्टिकल बताना चाहते हैं, वो बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए बताने की सबको तुम्हारे अनुभव को अनुभव की तलाश समझो, अपने गलत अनुभव को भी समझो कि गति कैसे हो रही है, तो समझेंगे तो फिर उसका जो उत्तर है वो कई किस प्रकार से है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि हमारी समस्या भी गहराई में से प्रकट होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं होनी चाहिए, हमारा प्रश्न भी गहराई से आना चाहिए, तब तो जो उत्तर की गहराई है वो पकड़ पाएंगे। ऊपर 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 जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। मान लेंगे कि हमको समाधान हो गया, हमको समझ आ गई है, समझते हैं वास्तव में जो एकदम वो बात हो जाएगा। इसलिए द्रव्य एक नहीं भाव भी एक नहीं, द्रव्य भी एक नहीं भाव से भी एक नहीं, इसलिए एक जैसा एक नहीं एक ऐसा ऐसा कहा है। कोई नहीं सकता कि नहीं हो सकता, तो हो नहीं सकता तो फिर भिन्न करने में क्या आपत्ति है? अगर एक हो गया तो कोई आपत्ति हो जाती, लेकिन हो ही नहीं, हो ही नहीं तो सत्य असंभवित है।
Yeah.